ये आकाशवाणी है। अब आप जया भारती से समाचार सुनिए। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 9 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 96 लोकसभा सीटों के लिए कल मतदान होगा। इसमें आंध्र प्रदेश की 25, तेलंगाना की 17, उत्तर प्रदेश की 13, महाराष्ट्र की 11, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल की 8-8, बिहार की 5, झारखंड और ओडिशा की 4-4 तथा जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर वोट डाले जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने चौथे चरण के मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली है। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। इस चरण में 17,70,00,000 मतदाता मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए कुल 1,717 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इस चरण में कई प्रमुख उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। इनमें केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता गिरिराज सिंह, अर्जुन मुंडा, जी किशन रेड्डी, अजय कुमार मिश्र, जनता दल यूनाइटेड के राजीव रंजन सिंह, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा और शत्रुघ्न सिन्हा तथा एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी शामिल हैं। आंध्र प्रदेश में 175 विधानसभा और 25 लोकसभा सीटों के लिए कल एक ही चरण में मतदान होगा। राज्य विधानसभा के लिए चुनाव लड़ रहे 2,386 उम्मीदवार और 25 लोकसभा सीटों के लिए 454 उम्मीदवार हैं। इनके भाग्य का फैसला करने के लिए लगभग 4,14,00,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए 46,389 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और लगभग 1,06,000 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में विभिन्न राजनीतिक दलों के कई वरिष्ठ नेता और प्रमुख प्रचारकों ने आज चुनाव प्रचार किया। केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने आज वाराणसी में पार्टी के मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया। बाद में उन्होंने कौशाम्बी निर्वाचन क्षेत्र में एक रैली को संबोधित किया। अमित शाह ने रायबरेली और गोंडा निर्वाचन क्षेत्रों में भी प्रचार किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता योगी आदित्यनाथ ने मोहनलालगंज निर्वाचन क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने बहराइच तथा अमेठी निर्वाचन क्षेत्रों में भी प्रचार किया। वहीं कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र में हरचंदपुर से आज अपने प्रचार अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि रायबरेली में जो भी विकास हुआ है वह कांग्रेस के कारण ही हुआ है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल ने भी रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र में राहुल गांधी के पक्ष में प्रचार किया। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बाराबंकी में ईंडी गठबंधन के उम्मीदवार तनुज पुनिया के पक्ष में एक रैली को संबोधित किया। बाद में उन्होंने मोहनलालगंज और लखनऊ निर्वाचन क्षेत्रों में भी प्रचार किया। इजरायली सेना ने दक्षिण गजा में हमलों का विस्तार करने के उद्देश्य से रफा शहर को खाली करने के नए आदेश जारी किए हैं। यह आदेश मध्य रफा और अन्य क्षेत्रों पर भी लागू होंगे। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इस आदेश पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। इजरायली सेना ने कहा कि अब तक लगभग 3,00,000 लोग पलायन कर चुके हैं। फलस्तीन के लिए संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के प्रमुख ने इस कदम की कड़ी निंदा की है। एजेंसी के कमिश्नर जनरल फिलिप्पे लज्जारिनी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि युद्ध शुरू होने के बाद से गजापट्टी के लोग सुरक्षा की तलाश में हैं, जो उन्हें अब तक नहीं मिली है। नेपाल के जाने माने पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ने का अपना ही विश्व कीर्तिमान तोड़ दिया है। 54 वर्षीय यह पर्वतारोही रविवार सुबह 8,849 मीटर ऊंचे इस शिखर पर 29वीं बार पहुंचे। सेवन समिट ट्रैक्स द्वारा आयोजित इस पर्वतारोहण अभियान में 20 पर्वतारोही शामिल थे। चेन्नई में आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को आज 5 विकेट से हरा दिया। राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 141 रन बनाए। चेन्नई ने 18 ओवर और 2 गेंद में 5 विकेट पर 145 रन बनाकर जीत हासिल की। इस जीत से चेन्नई अंक तालिका में 3रे स्थान पर पहुंच गया है और प्लेऑफ में पहुंचने की उसकी संभावना बनी हुई है। आज का दूसरा मैच इस समय दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 18 ओवर में 8 विकेट पर 135 रन बना लिए हैं। और इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।